इकाई में परिणित हो जाए, बल्कि एकत्व में, बहुत्व बहुत्व में एकत्व, ये तो है हमारे शास्त्रकारों ने माना है, एको बहुश्याम इत्यादि ये सब बातें हैं, उसी के हम लोग सब हैं। किंतु कभी भी जीव ब्रह्म भगवान नहीं हो जाएगा, कृष्ण नहीं हो जाएगा, ये गीता उपदेश में कहीं भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर विष्णुंग लाभ मुक्ति, मुक्ति ही तो अन्यथा रूपम स्वरूप व्यवस्थित, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, भगवान की सेवा को हम पा सकते हैं। ये दूसरा, ये जो ज्ञान की बातें जो कही गई, स्थित प्रगत्य का भाषा समाधि सब इत्यादि यहाँ पर वर्णन पूछा अर्जुन ने। स्थिति जिनकी बुद्धि स्थिर है वो कौन है, तो इसमें उन्होंने चार पांच प्रश्न किए, इसका जो उत्तर है वही ब्रह्म स्थिति है। और इसकी अंतिम अवस्था है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षति समस्त सर्वेश भूतेषु मत भक्तिम
लभते परम।
ये बतलाया जिसको ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत की स्थिति क्या है वो द्वितीय अध्याय में बतलाया गया, उसी को मैं बता रहा था। गुह्य हानि लाभ कुछ भी हो उसमें मोहित नहीं, दुखेसु अनुदिग्न है, सुखेसु दुखेसु विगत स्त्रिया, सुख में आकांक्षा उसकी कामना और दुख में महा उद्विग्न हो गया ऐसा नहीं, संभाव है। हमारे श्रीमद्भागवत की गीता में भी आचार बतलाया गया, श्रीमद्भागवत में ऐसा बतलाया गया, यदि दुख अपने आप बिना बुलाया जाता है तो सुख भी आ जाएगा। इसलिए न तब प्रयास वो कर्तव्य जो था आयु व्यय परम, ये तो आयु व्यय क्या करना है, वो अपने आप होगा भाई। इसलिए क्यों मार भगवत भक्ति की, आत्मज्ञान के लिए चेष्टा करो, भगवत भक्ति के लिए चेष्टा करो, ये गीता का साधारण रूप में गुह्य उपदेश है। यदि इस तत्व को हम जाने कि ये सुख और दुख आएगा, शरीर आज नकल जाएगा, जब जन्म लिया है तो मरेगा ही, रोग भी जरूर होंगे ये शरीर के लिए, शरीर के जाने से ही हम मर नहीं जाते आत्मा नहीं, ये तो आत्मा के साथ में शरीर का मिलन जन्म और विछुड़न को मृत्यु हम लोग कह देते हैं, और इसी में शोक में हम मुझमान होकर के अपने कर्म से विचित हो जाते हैं। इसलिए ऐसा ना करके इन चीजों को समझ करके ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा सब समय प्रसन्न रहता है, न सोचती न कांक्षती, न शोक करता है और न किसी वस्तु की आकांक्षा करता है। संसार में जितनी भी बुराइयों की जड़ और अशांति की जड़ ये कामना है, यदि हृदय में कोई कामना नहीं संसार की वस्तुओं के प्रति तो न तो उसे क्रोध होगा, न उसे कोई दुख होगा, न कभी उसका चित्त उद्विग्न होगा। इसलिए भक्ति के लिए भी इस स्थिति की जरूरत है, ज्ञान के लिए भी इस स्थिति की जरूरत है, जगत में सुख और शांति के लिए भी इस चीज की आवश्यकता है। न शोचित न कांक्षति समस्त सर्वभूतेषु समस्त प्राणियों में सम रहता है, और ऐसा व्यक्ति अंत में प्राप्त भक्ति अर्थात प्रेम भक्ति लाभ करता है भगवान की चरणों में, जिसे भगवान भी उसके द्वारा वशीभूत हो जाता है, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध इत्यादि में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हम इसके ऊपर में केवल एक सूक्ष्म विहंगम दृष्टि से इस पर विचार करेंगे। तीसरा है गुह्यतर, पहला दूसरा बतला ब्रह्म ज्ञान, अब कुछ परमात्मा ज्ञान में हम आएंगे। यद्यपि ब्रह्म परमात्मा भगवान एक ही वस्तु है, किंतु तीन प्लेटफॉर्मर्स हम उसको देखते हैं, त्रिविध अधिकारी उनको देखते हैं, एक ज्ञानी, एक योगी, एक भक्त। ज्ञानी उनको परमात्मा ब्रह्म के रूप में देखता है, योगी लोग उनको परमात्मा के रूप में दर्शन करते हैं ईश्वर के रूप में, और भक्त लोग उन्हीं को भगवान के रूप में दर्शन करते हैं। यदि और इसे कुछ तीसरी सीढ़ी पर यदि चढ़ना है, कहते हैं कि भाई ऐसा कोई भी जीव नहीं जिसके अंदर में साक्षी के रूप में परमात्मा विराजमान न हो, वो विष्णु इसीलिए है कि व्यापक है सब जगह, सबके वो पोषता है, सबका वो पोषण करने वाले हैं, अंतर्यामी हैं सबके, वो नियामक है। इसलिए जज्ञार्थात कर्मणो लोकमनत्तर कर्मण वंदना, केवल सुख दुख को समान कर लेने से नहीं चलेगा, केवल ब्राह्मी स्थिति होने से ही काम नहीं चलेगा, प्रभु का कुछ ध्यान भी होना चाहिए, प्रभु के साथ में कोई संबंध भी होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, इसलिए वो बतला रहे हैं निष्काम भी होना होगा, यदि नहीं है तो भी कोई बात नहीं। जब यथा तो कर्मणो लोकय मनत्र कर्म मंदना तदर्थम कर्म कंतेय मुक्त संग समाचरण। एक इसी श्लोक को भी हम लोग यदि अनुसरण करें तो भी हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। कहते हैं यज्ञार्थात कर्म, भगवान की प्रीति के लिए हम झाड़ू भी देते हैं मंदिर में, ये भी यज्ञ है। यज्ञ ऐसा कोई ये नहीं है कि अग्नि में ओम स्वाहा ओम सांग विष्णु स्वाहा इत्यादि, यही नहीं, बल्कि अपने को ही भगवान के चरणों में संपूर्ण रूप से अर्पित कर देना। गोपाल मंत्र इत्यादि में स्वाहा शब्द का तात्पर्य इसी रूप में आया है और यही यथार्थ यज्ञ है। यज्ञार्थात कर्मणो, जो भी कुछ करो भगवान के लिए करो, भगवान की स्तुति के लिए करो। यज्ञार्थात कर्मणो लोको मनत कर्म बंधन, और जितने भी कर्म है इसके अतिरिक्त वो कर्म बंधन है, इसलिए तत् अर्थम कर्म कुरु, उनके लिए ही कर्म करो, इसलिए वहां पर बतलाया गया। और भी बतलाया गया अनासक्त होकर के करो, आसक्ति के सहित नहीं इस जगत के कर्म, और सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित करो। पत्रम पत्वम फलम स्वयं जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तु प्रसतम स्नानी प्रजतात्मन। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धापूर्वक प्रजतात्मन भगवान की स्तुति के लिए यत्न करता है अंतरहृदय से, ऐसे नहीं दे दिया लिया तो लिया, नहीं तो नहीं लिया, ऐसे नहीं, प्रयत्न करता है अंतर हृदय से, तो कहते हैं कौन सा श्लोक बोला,
पत्रम
पत्रम पुष्पम, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, धन नहीं है कोई बात नहीं, मन तो है हृदय तो है, हृदय के साथ में एक तुलसी का कोमल सा पत्ता ले दो, पुष्पम कोई भी पुष्प उनको दे दो, फलम कोई भी फल हो, अपने कर्मों का फल हो, ऐसा ये फल हो, बाजार से अपने लिए बाजार से फल मांग खरीदने जाओ, प्रभु की प्रसन्नता के लिए, प्रभु के लिए, ये विश्व सम इहा अवश्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत चांतरम, ये सब प्रभु का है, प्रसाद के रूप में है, भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में जीवन निर्वाह करने के लिए जितना जरूरत बस उतना ही ग्रहण करेंगे, और नहीं तो भाई मरण होगा, बड़ी अशांति हो जाएगी, हम उसके मालिक नहीं आता समझो। ये यज्ञ का यही तात्पर्य, यज्ञ अर्थात तो कर्मणो लोक है मन पर कर्म बंधन, नहीं तो कर्म का बंधन हो जाएगा, इसलिए जब करोसी जदस्नासी यज्ञ होसी जब तपस्यसी, सब कुछ कृष्ण के चरणों में अर्पण करो। किसको अर्पण करें ये समझ लीजिए, कृष्ण गीता में कहते हैं, श्रीमद् भागवत में कहते हैं, ऐसा कोई पुराण नहीं है जिसमें कि नहीं कहा गया है, मत्तः परतरम किंचित नास्ति धनंजय, हे अर्जुन हमसे बढ़कर के कोई परतत्व नहीं है जगत में, जितने भी अवतार हैं जितनी भी विभूतियां हैं ये सब कृष्ण की विभूतियां, कृष्ण के अवतार, कृष्ण के प्रकाश, कृष्ण के वैभव, ये सब है, मूल रूप में भगवान कृष्ण है, और उसमें भगवत भगवत्ता नहीं, सबसे अधिक भगवत्ता, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर राधा चिंताराधा रमण गोपीनाथ मदन मोहन श्याम सुंदर में है, थोड़ा सा वैशिष्ट्य है, मथुरेश कृष्ण द्वारकेश कृष्ण और ब्रजेश कृष्ण में, किंतु वहां अभी हम लोगों का अभी उसमें हम नहीं जाएंगे, हम साधारण रूप में गीता के ऊपर नहीं हम चल रहे हैं अभी, इसलिए यहां कृष्ण को ही परतत्व समझें, कृष्ण से बढ़कर के कोई तत्व नहीं है, कृष्ण के समान कोई दयालु ही नहीं है। श्रीमद् भागवत इत्यादि में वर्णन किया गया है, पूतना उनको कालकूट अपने स्तनों में लगा करके गई मारने के लिए, और उसको मुक्ति ही नहीं घात की उचित गति दे दी, गोलोक वैकुंठ में उसकी गति दे दी। ऐसा दयालु कौन होगा जिस जिसका दूसरा भजन करे, और विशेष रूप से ब्रज में कहीं भी, ब्रजमंडल में कहीं भी जन्म हो और कृष्ण को छोड़कर के किसका कौन भजन करेगा। इसलिए कहते हैं जब करोसी जदस्नासी जज्जुहोसी जदासी जब तपस्त कौन के तत्कुरुष समदर्पणम अर्पण कर दो। किंतु यहाँ पर एक बात बतलाना चाहूंगा, इन दोनों श्लोकों में कुछ वैशिष्ट है। कृष्ण को अर्पण करना माने अपनी कोई चीज कृष्ण को देना, और जहां अपनी कुछ है ही नहीं है, शरीर भी नहीं है, मैं भी अपना नहीं हूं, मैं सब कृष्ण का। इसलिए सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पाप मोक्षयिष्यामि, जो वहां जो कहा गया है, भाई पहले अपने को ही अर्पण कर दो। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षण, पहले अपने को अर्पण कर दो, उनका हो जाओ, फिर तुम्हारा सर्वस्व उनका हो जाएगा, फिर अर्पण करने की जरूरत नहीं होगी। अर्पण करने में कुछ घटिया किस्म की भक्ति होती है, सगुणों उपासना हो जाती है, सगुण भक्ति हो जाती है, वो निर्गुणा भक्ति नहीं है। निर्गुणा भक्ति है अपने को भगवान का बना लो और तुम्हारा सर्वस्व भगवान का हो जाए, उस समय में जप करो उसी जदस्नासी। इसीलिए इन सब लोगों को उपदेशों को महाप्रभु जी ने कहा कि हो बाध्य आगे कहा। और आगे थोड़ा सा चलिए, अब हम लोग चलते हैं गुह्य तम गीता के सातवें अध्याय में जो बतलाया गया उसको हमने बतलाया अभी तक, वो है गुह्यतम। गुह्यतम में नौम अध्याय जो है उसमें भगवत तत्व का विश्लेषण किया गया, और उस भगवान के प्रति हम उनको कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी प्रसन्नता से कैसे हम सुखी और शांति हो सकते हैं, ये सब चीजों का उसने विश्लेषण किया है। उसमें कर्म के लिए बतलाया गया है, जितना भी अच्छा कर्म करोगे ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, भाई वहां से गिरना पड़ेगा स्वर्गलोक से, जितने भी अच्छे कर्म करोगे भाई इसमें सुख और शांति नहीं है, इसलिए इधर मत जाओ। उन्होंने कहा जो प्रकृति की उपासना करता है प्रकृति में जाता है, जो पूर्वजों की देवताओं की उपासना करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जो ऋषियों की उपासना करते हैं ऋषि लोक में, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों के लोक को प्राप्त होते हैं, किंतु माप उपत्य फिर मुझे पाप प्राप्त होकर के फिर वहां से उसका गिरना नहीं हो सकता। वहां से जो कृष्ण का भजन करेगा वो हमें पाएगा और फिर वहां से कभी भी वो नीचे नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, क्यों कि ये बतला रहे हैं तपस्वी को जोगी कर्मी भट्टी को जोगी ज्ञानों को भी मतोधिकर तस्मात जोगी भवासी जोगी नाम सर्वेशांग मतगते न अंतरात्मना श्रद्धामान भजते जो मंग कमे युक्त समूह मता। कर्मियों से योगी बड़े हैं, ज्ञानी से भी योगी बड़े हैं, तब तो कर्म योग भी है। कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग ये तीन मार्ग नहीं है, एक ही है। केवल रास्ता पहला रास्ता का पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। जैसे एक कच्चा आम, एक अधपका आम और एक पूरा पका हुआ आम, उसी तरह से कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग कोई अलग तीन योग नहीं है। उसके पहले भाग कर्म योग, दूसरे को ज्ञान योग, तीसरे को भक्ति योग कहते हैं। तो इसमें हम अभी कौन सा श्लोक तपस्वी को योगी तप योगी की अपेक्षा कर्म योगी से श्रेष्ठ, ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ योगी, और योगियों में योगी नाम सर्वेशां मदगतेन अंतरात्मना अंतर मन से हमारे प्रति योग कर दे। योग कर दे मैंने जैसे एक और एक दो होता है वैसे प्रभु की सेवा में तुम मिलो, उनकी सेवा करो। मदगतेन अंतरात्मना अंतर आत्मा से इससे बढ़कर के कोई योगी नहीं है, ये सभी बतलाया। हम लोग भी यदि अभी जो गुह्य गुह्य तर इत्यादि बतलाया है अपने मन का संयोग किसी प्रकार से भगवान के चरणों में कर दें, और जैसे कि गीता के नौ अध्याय के मन मनाभाव मद भक्त इत्यादि का यदि कर दें तो हम लोगों का जीवन चरम रूप में सफल हो जाएगा। यहां तक लोग बहुत कम पहुंच पाते हैं। अर्जुन ने ये सब चीज को सुना। 11-12 अध्याय में जिसका भी आप लोगों ने पाठ किया साधारण नहीं है गीता का, बल्कि सार इसी में है। गीता का एक सेदी है और एक ढक्कन है, एक से लेकर के 6 तक सेदी है और उधर का ऊपर वाला जो 6 अध्याय है वो ऊपर का ढक्कन है और एक बीच का जो भाग है 9 से लेकर के ये 12 9 और 12 इत्यादि ये गीता का सर्वोत्तम उपदेश इसी के अंदर में रत्न की भांति ये है। गीता एक संपूर्ण सोने के थाल या वक्त के समान और भीतर में ये सब उपदेश है। कहा न गया कि क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त के तथा मैं ब्रह्म हूं, मैं निराकार हूं, भगवान निराकार हैं, हम भी निराकार हैं। जितने गीता यहां पर भागवत के बड़े बड़े वक्ता लोग आए हैं बहुत दुख होता है, लाखों जनता तो जाती है, इन चीजों को समझ नहीं पाती। ऊपर से 2-4 रंगीले और पुष्पित वाक्य कह करके भगवान को निराकार बना करके उड़ा देते हैं और जीव को भी, और अंत में कहते हैं कि ऐसा हो गया ये अंगुष्ठ और ये अंगुली दोनों मिल गई और एक हो गया। क्या एक हो गया? पत्थर हो गया। ये क्या हो गया? निराकार, निर्विशेष, निरंजन, निष्क्रिय, अनादि, अनंत। भगवान ऐसे ही नहीं है, वो तो रसमय है। इसलिए वहां पर कह रहे हैं कि अर्जुन ने ये सब सुना। क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जो अव्यक्त भगवान को निराकार मानते हैं, जीव को भी निराकार मानते हैं और अंत में दोनों का मिलन करके एक वस्तु बना देते हैं, वो भी इसमें कोई चेतनता, उसमें सुख, रस, विचार, क्रिया कुछ भी नहीं है। ये तो भगवान को ठूठा बना दिया, निर्विशेष बना दिया। इसलिए कहते हैं कि भाई उससे थोड़ी सी चित्त शुद्धि होगी और यदि साधुओं का संग हो जाएगा तो लभते पराम, पराभक्ति लाभ हो सकता है, किंतु जरूरी नहीं है ये होगा ही। साधु संघ के ऊपर में सब कुछ है, साधु संघ, साधु संघ सर्वशास्त्र का है, बिना साधु संघ के नहीं हो सकता है। और जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तब तक ऐसे रसिक तत्पज्ञ वैष्णव का संग नहीं होगा, तब तक गीता का ये सब समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं इसमें केवल आसक्त ही है, आप लोग भगवान को कभी निराकार मत समझेंगे। अर्जुन को उपदेश देने वाले कहते हैं कि हम अपने को अंगुली दिखला के कहते हैं, वो है ना, वो भी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं माम एव जे प्रपद्यन्ते। माम, माम माने किसको? यदि वो अव्यक्त है तो माम किसको कह रहे हैं? मुझे, मैं कौन हूं? कृष्ण हूं। अंगुली दिखला करके जहां पर कह रहे हैं, कहते हैं श्याम सुंदर है, ऐसे लोगों को कहते हैं निराकार, गीता निराकार है ऐसे ना, ऐसा नहीं, गीता का उपदेश नहीं है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अंत में जब अर्जुन ने कहा मैंने सब आपके उपदेश सुने, अब कृपया हमको इनमें से मुझे क्या करना चाहिए, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, थोड़ी सी आप कृपा करके मुझे बतलाइए मेरे लिए क्या करना है। भगवान द्रवित हो गए, द्रवित होकर के कहें देखो तुम हमारे बड़े प्रिय हो और मैं तुमसे सर्वगुह्यतमम सुनने परमम बचा, गुह्यतर हो गया, गुह्यतम भी हो गया, अब यहां पर सर्वगुह्यतमम परमम बचा, अब इनको बतला रहे हैं। कहां बतला रहे हैं? 65 श्लोक में, गीता के 18वें 64 या 65 श्लोक होगा उसमें बतला रहे हैं, अंतिम में बतला रहे हैं मन मनाभवो, मन मनाभवो मद भक्तो मद याजी मां नमस्कुरु माम एव एष्यसि, क्या सप्तम प्रियो सिने, अर्थात मन मनाभवो, ऐसा करो चित्त हमारे में लगाओ। कैसे चित्त लगाओ? कृष्ण कहते हैं उद्धव जी को भेज रहे हैं ब्रज में। गीता सूत्र है, विस्तृत ग्रंथ नहीं है, व्याख्यान ग्रंथ नहीं है, क्योंकि समस्त उपदेशों तो उपनिषदों और वेदों का भारतीय वाङ्मय का ये सूत्र है। जैसे वेदांत सूत्र है इसको कम मत समझेंगे, इसलिए गीतोपनिषद इसको कहा गया। तो उसमें कहते हैं मन मना भव, अर्जुन जो कि सचमुच तू हमारा प्यारा है, मैं तुमको उपदेश देता हूं, मन मना भव, अपने मन को हमारे में दे दो, हमारे में लगा दो, हमारे हो जाओ। कैसे? इसी के लिए श्रीमद् भागवत में जाना पड़ेगा इसका उदाहरण खोजने के लिए। उद्धव जी को कृष्ण भेज रहे हैं ब्रज में, ओ ब्रज में जाओ, हमारे माता पिता बड़े दुखी हैं हमारे लिए, विशेष करके पा मन मनाक्का मत प्राणा मदर्थे तैक्त दई हसा, ता मन मनस्का मत प्राण मदर्थ तत्व देह का मामेव दैतम प्रेस्तम आत्मानम मनसा तथा। उद्धव ब्रज में जाओ, मन मना भवो, ये जो है इसकी व्याख्या बतला रहे हैं। ता मन मनस्का, वो अपने मन को दे दिया, मनसा तथा मन को भी हमारे अंदर में दे दिया है। कैसे दिया है देखेंगे इसको भ्रमर गीता में। गोपियां जब कृष्ण का अन्वेषण कर रही हैं, 35वें अध्याय में देखिए, जो श्रीमद् भागवत का वो प्राण है, पंच प्राणों में मुख्य प्राण है वो, गोपियां कैसे हो गई हैं, शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं है। कैसी हो गई है, मैं एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की चेष्टा करूंगा, इसके बाद अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। राधा जी एक भ्रमर को देखा, अब भ्रमर को देख करके कहती हैं, सोच रहे हैं ये कृष्ण का कोई काले का काला दूत आया, सचमुच में अंतर बाहर काला है, अपने गूंथों पर ये कुमकुम कहां से लगा करके आया, और अधिक मान हो गया। उद्धव जी बहुत दूर से खड़े हैं देख रहे हैं, नंद बाबा का ही प्रेम देख करके विस्मित हो गए। सोचा जाए था पहले जो कृष्ण को छोड़कर के मैं कैसे ब्रज में जाऊंगा, इन लोगों का संग पा करके कृष्ण को भूल गए, देखा जो कृष्ण तो संपूर्ण रूप में ही है, वो मथुरा में तो है ही नहीं, और है तो आंशिक रूप में कला रूप में वहां है, संपूर्ण रूप से यही है, देखा गोपियों के निकट ये है। राधा जी कह रही है भाव में विभोर होकर के, शरीर का कोई होश नहीं, किससे बात कर रही है, देख रही है एक भ्रमर है उसे बात, वो भ्रमर राधा जी के चरणों के पास चारों तरफ में घूम रहा है, मानो समझता है कि ये कमल है, वो समझती है कि ये कह रहा है हमको कृष्ण ने भेजा है, आप उनसे सुलह ना मा कीजिए, आप उन पर मान मत दीजिए, वो निर्दोष है, आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। कैसा सुंदर उसने वर्णन किया है, रसिक ही वेद्य है, रसिकों का अतिरिक्त उस चीज को नहीं समझेगा। विशेष करके जब उन्होंने कहा मृग युग कर संद्रम दर्दे लुप्त धर्मा, इस श्लोक में तो चरम हद कर दी उन्होंने, तीरा रस का एकदम भूल गई। गोपियां खोजते खोजते कृष्ण को तन्मय होकर के अपने को समझा कि मैं ही कृष्ण हूं, किंतु ये वो ब्रह्मवाद नहीं, ये प्रेम का एक विकार है। तो एक छोटी सी लघु कथा यहां पर मैं उपस्थित करता हूं। ब्रज में कोई नवेली, अभी दो चार दिन हुए विवाहित होकर के कोई आई है, कृष्ण गोचारण करने के लिए सवेरे जा रहे हैं अपने सखाओं के साथ में, चारों तरफ में हल्ला हो गया, ये कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं, और की तो बात क्या, बच्चे बूढ़े बूढ़ी बच्चियां लड़कियां किशोरियां विवाहिता अनविवाहिता, यहां तक कि अंधे भी अंधे का हाथ पकड़ करके कृष्ण का ये गोचारण गमन लीला दर्शन करने के लिए चलने लगे। कोई अपने दरवाजे के पास में खड़ी हो गई नवेली, कोई खिड़कियों से झांक रही है, कोई दरवाजे पर कार करके खड़ी हो गई। इस तरह से ब्रज में ऐसा कोई नहीं था जो निकल करके दरवाजे पर ना आ गया हो और कृष्ण के उस मधुर रूप का दर्शन करना कर रहा। श्रीमद् भागवत में इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। वही आखिर धन्य है जो कृष्ण को इस समय कृष्ण और बलदेव के साथ में जाते हुए अथवा बलदेव जी के पीछे पीछे जो कृष्ण बंसी वादन कर रहे हैं। इनकी बड़ी सुंदर व्याख्या हमारे मठ में इन्होंने की थी, ये कृष्ण बलदेव नहीं, कृष्ण के पीछे पीछे चलने वाले मधुर बंसी बजाने वाले जो कृष्ण है जो जा रहे हैं, हंसते हुए मुख से मुखारविंद से तिरछी नजर से गोपियों की तरफ में वो देखते हुए मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे कृष्ण का जिसने दर्शन नहीं किया उसका जीवन और उनकी आंखें न रहने के बराबर है, उनकी आंखें व्यर्थ हैं। गोपियां देख रही हैं सभी, नवेली को उसकी सास कह रही है, ऐ देख सभी यहां तू मत जाना, तो मैं तो जाऊंगी दर्शन करने के लिए उनका, मत जाना, काला भुजंग है, बड़ा विषधर है, काट देगा कभी विष नहीं करेगा, मत जाना, खबरदार। मैं किसका बतला रहा हूं, मन मन अभाव, कैसे मन मन अभाव होता है, इसका एक झांकी देने के लिए। तो वो कह रहे हैं मत जाना, कहिए तो तुम्हारी लड़की जो जा रही है, लड़की जा रही है तो तुम क्यों जाएगी, तुम मत जाना, अरे उसकी बहू भी तो जा रही है। मैं कहती हूं हमारी बात, मैं परिपक्व हूं, मैं इस बात को समझती हूं, कभी बीच नहीं करेगा जीवन भर, नहीं तो मैं तो जाऊंगी, मेरी बात नहीं तुम माननी, अब तुम क्यों जा रही हो बूढ़ी होकर, किसी तरह से नहीं मानी वो आगे, किंतु बूढ़ी पड़ गई आगे, कहिए तुम मत जाना मैं अभी आ रही हूं, उसके पीछे पीछे ये भी चल गई और दरवाजे पर जाकर के खड़ी हो गई। वैन श्लोक, कृष्ण बांसुरी बजाते हुए चले जा रहे हैं, सखा लोग चारों तरफ से घेर रहे हैं, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्ण यो कर्ण बिभ्रत बासक कनक कनकम जमालम। वो ठीक वही की प्रतिमूर्ति कृष्ण बड़े ही सुंदर लुभावने रसिक कृष्ण चले जा रहे हैं। आंखें उनकी मानो कुछ खोज रही हैं, किसको खोज रही हैं, कुछ नवेलियों को ही खोज रहे हैं मानो। नजर गई उनकी, देखा उन्होंने और वो तन्मय होकर के वहीं से देख रही है कृष्ण को। कृष्ण ने सोचा जिसकी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए, सबकी मनोकामना वो कृष्ण पूर्ण करते हैं, बस वहीं से एक बछड़े को बिचका दिया, उसका पूंछ थोड़ा सा मोड़ दिया और सुंदर हंस सा बछड़ा कूदता हुआ एकदम ऐसा कृष्ण ने डायरेक्शन उसको दिया जैसे एकदम ठीक दरवाजे के पास में पहुंचा और झट कृष्ण उसके पीछे से ही मानो उसको पकड़ने के लिए जा रहे हैं, बस झट वहां पर पहुंचे। गोपी एकदम तन्मय होकर खड़ी थी, कृष्ण को देख रही थी। कृष्ण ने अपनी बंसुरी ली और उसके चिबुक में थोड़ा सा स्पर्श करा दिया, उसके तरफ में ऐसी मनमोहन रूप से दृष्टि से उसने देखा, वो दृष्टि उसके भीतर में जाकर उसके मन को अपहरण कर लिया और लेकर के साथ ही साथ में कृष्ण उधर से छलांग मारते हुए चले गए। बस गोपी रही, उसका शरीर रहा, मन कृष्ण के साथ में चला गया, खड़ी की खड़ी रह गई। कृष्ण चले गए, धूल भी उड़ना बंद हो गया, सब लोग जहां तहां अपने अपने घरों में चले गए, घंटों बीत गए, वो दरवाजे पर खड़ी की खड़ी रह गई। रात में कहा था ना मैंने चढ़ जाएगा भी, चलो चलो चलो, खिलाया शरीर घर में ले गई, बोले जी इसका मन तो होश में नहीं है, जाओ घर से कोई मटका ले आओ दही का और समंथन करो, अभी तो जाओ ले आओ, कह तो दिया तो मन तो था नहीं, घर में गई और मटके के बदले में सरसों का मटका उठा लाई और दही का वो लेकर के मंथन मंथनी और उसी राई को मथने लग गई। दूध है दही है क्या है उसको ये ज्ञान नहीं, क्योंकि चित्त उसका नहीं, मन मना भाव कृष्ण के साथ में, अरे ये क्या कर रही, इसको दूसरा ऐसा कोई काम दो जिससे इसका लौट आए, बस होश में आ जाए। उन्होंने उसको कहा पानी लाओ तो पानी भर लाओ, एक घड़ा दे दिया उसके ऊपर में, एक घड़ा दे दिया, रस्सी भी मोटी से दे दी और एक छोटा सा बच्चा भी उसकी गोद में दे दिया। जाओ कुआं कुछ दूर कुएं पर गई, बच्चे को उतारा, घड़े को भी उतारा, रस्सी भी निकाली और उसमें फांस बनाया, उसमें बांध करके एक घड़े में, और उसको नीचे गिराएगी पानी भरेगी। मन तो है नहीं, मन मनाभाव है। उसने उस रस्सी को लेकर के उस बच्चे को जो बिठाया था घड़ा समझ करके उसी के गले में दे करके और कसने लगी। गोपी ने कहा ये देखो 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 क्या करे, अरे अरे ठहरो ठहरो ठहरो, कोई कहती है इसको भूत लग गया। आज जो जानती है इस विषय को ये कृष्ण चीज का चित्त हर लेते हैं, ऐसे ही हरते हैं। उन्होंने कृष्ण इसको भूत नहीं लगा, इसको नंद का पूत लगा है। समझ गई वो है? इसको कहते हैं मन मनाभाव, न जाने कब तक होश में आई कि नहीं आई। इसके बाद में वर्णन तो नहीं किया है गोपियों हमारे गोस्वामियों ने, किंतु ये उदाहरण दिया ये मन मनाभाव। यदि ऐसा मन कोई कृष्ण में चित्त दे दे, ऐसा कोई गुरु मिल जाए, विशेष करके गोपियां रूपी गुरु यदि मिल जाए, कहीं ललिता विशाखा मिल जाए, तो ऐसा संभव। तो गीता का यह चर्म जो उपदेश है मन मनाभाव ये हो सकता है। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके जब प्रभु ये ऐसा संभव पर नहीं है, ये युद्ध क्षेत्र है, ये कैसे हम ऐसा मन मनाभाव अपने मन को दे देंगे। तो युद्ध आप कहते हैं युद्ध भी करो और हमारा स्मरण भी करो, तो मैं युद्ध कैसे कर सकता हूं। तो उन्होंने मदभक्त हो तब द्वितीय रूप में उन्होंने कहा अच्छा और थोड़ा सा नीचे उतारा, यहाँ पर हो सवाल है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शन सक्षम आत्मनिवेदनम अथवा योग से हम अनन्य चिंतन तो मांगे जनु जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम। जो लोग अभी होश तो है, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करते हैं, तत्वज्ञान भी उनका पहला जो हो गया है वो हो गया है, दूसरा गुह्यतर भी उनका हो गया है, उससे ऊपर उठ गए हैं गुह्यतम भी हो गया है, अब सर्व गुह्यतम में आने वाले हैं, अभी हुआ नहीं, अभी भावावस्था तक प्राप्त है। जैसे बिल्ल मंगल का हुआ, बिल्ल मंगल को साधक कहते हैं, उसके नीचे वाले अभी साधक नहीं है, विशेष करके रागानुगा के। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक वैधि भक्ति और एक होती है रागानुगा। चैतन्य महाप्रभु विशेष करके इस रागानुगा प्रेममयी भक्ति को देने के लिए जगत में आए थे, गीता का भी वही उद्देश्य है अंत में, किंतु सूत्र रूप से यहाँ पर वर्णन किया गया। इसलिए यदि जिसका मन ऐसा नहीं हुआ कि हम उनमें कृष्ण में अपने चित्त को दे सकें, तो इतना तो कर सकते हैं कि भगवान का सततम कृतयंतो मांगे जनो पाद्युपासते, सब में भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, उनका कथाओं का श्रवण कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, जैसे बिल्लो मंगल, किंतु जैसे बिल्लो मंगल जी ने किया ऐसा नहीं हो तो उसके नीचे और आएंगे। कहते जी कैसे, हम सुनते हैं कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अर्जुन, बहुत दिनों की बात है, गीता का अनुशीलन करते थे और गीता के समस्त विषयों पर उपदेशों पर बड़ा उनका बहुत ही श्रद्धा थी। उसके टीकाकार भी हैं गीता के, उन्होंने, अब मैं समाप्त ही करना चाहता हूं, दो चार पांच मिनट लगेगा। तो अर्जुन जी जब गीता के श्लोकों की का अर्थ और व्याख्या करते हुए इस श्लोक पर आए, अनन्य चिंतयंतो मांगे जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम्। जो लोग सब समय अनन्य चित्त होकर के अपने समस्त सर्वधर्मान प्रत्यजमान एकम शरणम ब्रज होकर के स्वरूपतः और सिद्धांततः सब कर्मों को जो मैंने छोड़ दिया है, एक तो होता है कर्मों में आसक्ति छोड़ करके कर्म करें एक, ये त्याग होता है, और एक होता है स्वरूपता अर्थात आसक्ति और स्वरूपता भी उसको छोड़ दिया, जैसे चैतन्य महाप्रभु इत्यादि, सुखदेव गोस्वामी, नारद जी, ये स्वरूपता और फलता दोनों छोड़ दिए हैं। और लोग हैं जिसको उन्होंने निष्काम कर्म इत्यादि किया है। तो यहां पर कहते हैं यदि कोई व्यक्ति स्वरूपता भी कर्मों को छोड़ दे तो भी कुछ न कुछ खाने पीने इत्यादि के लिए तो करना पड़ेगा, किंतु उसको भगवत उपासना में बना करके करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं मन मना मद भक्तो हमारे भक्तों, कैसा जैसे अर्जुन जी है कर रहे हैं गीता का, करते करते जब ये श्लोक आया जो अनन्य रूप से हमारी भावना करता है और उसको और कर्मों के लिए समय नहीं मिल पाता है खाने पीने इत्यादि के लिए, योग और क्षेम जो चीज नहीं है उसको दे देना आवश्यक, और जो चीजें हैं उसकी रक्षा करना ये क्षेम है, मैं स्वयं अपने कंधे पर धो करके पहुंचा आता हूं। उन्होंने आज 50 वर्ष हो गए गीता पढ़ते हुए और भगवान का भजन करते हुए, आज तक धो करके नहीं ले, हो सकता है किसी के माध्यम से कोई चीज पहुंचा दें ये तो मैं मान सकता हूं, धो करके नहीं ले जाते। उन्होंने एक लाल काली से स्याही से उस पर उन्होंने काट दिया और काट करके चले गए भिक्षा में। उस दिन दो पहर या तीन पहर तक उनको कुछ भी भिक्षा नहीं मिली, लौट रहे थे घर में तीन प्रहर पर। इसी के बीच में दो पहर में एक छोटा सा सांवला सलोना पीतांबर का कपड़ा पहने हुए साधारण बालक जैसा एक बंगी पर, बंगी कहते हैं कंधे पर रखते हैं, दोनों तरफ में बड़ी बड़ी टोकरियों में चावल दाल आटा घी मैदा बूरा जो सब सामान होना चाहिए सभी सामान दोनों पर भरा हुआ, और छोटा सा बालक किशोर 13-14 वर्ष का अधिक से अधिक, बड़ा सुकोमल सी अंग, पसीने से लथपथ हंसता हुआ दरवाजे पर आया। मैया दरवाजा खोलो, बड़े सुरले कंठ से बोला उनकी पत्नी ने, राजी कौन है? मैं पंडित जी का शिष्य हूं, उन्होंने कुछ सामान भेजा है। तो उसने खोल दिया, एक तो कुछ कपड़े तन ढकने के लिए नहीं थे, ब्राह्मण देवता ही उनके कपड़े पहन करके चले गए, फटाफटा कपड़ा उन्होंने अपना पीतांबर फेंक दिया उसके ऊपर में, और दरवाजा खोल दिया उन्होंने। दरवाजा खोलने के बाद दिए लेकर के भीतर में पहुंचे, पसीने से एकदम लथपथ, मुख कुछ सूखा हुआ, क्लांत हो गए हैं। अरे बेटा वो पंडित जी कहाँ है? पंडित जी भी धरी रह गए, बोली इसे बेटा तू ले जाकर के हमारे घर में दे आ, मैं आ रहा हूं। इतना भार तुम्हारे कंधे पर छोड़ दिया, ये तो बड़े निष्ठुर, आज तक मैं उनको तो निष्ठुर नहीं जानती थी। मैया क्या कहूं, केवल इतना भार ही नहीं, उन्होंने बुलाया, मेरे आने में कुछ विलंब हो गया और विलंब होने के नाते मुझ पर बिगड़ गए और अपने नाखूनों से मेरे पीठ में चीर दिया बिगड़ करके। देखा सचमुच में ऐसे मालूम रक्त उद्गम हो रहा है, वो लाल एकदम यहां से उड़ा गया। देखते ही उसके आंखों में आंसू आ गए, बोली इतने निष्ठुर पंडित जी आज आते हैं तो मैं देखती हूं उनको। एक बच्चे को अपने आधा सामान वो खुद ही ले सकते थे, दूसरे शिष्यों को बुला लेते, सब इस पर छोड़ दिया और उसको भी ऐसा बकोट दिया उन्होंने, नोच लिया। अच्छा तो ठीक है बेटा आने दो उनको, तुम बैठो मैं अभी रोटी बनाती हूँ, खा पी करके जाना, ऐसे मत चला जाना, अभी बैठो यहीं बस, साथ साथ में कुछ चावल और उसमें मन लेकर के और रसोई बनाने के रसोई घर में गई, और इतने में थप थप की आवाज हुई सामने। पंडित जी ने कहा दरवाजा खोलो, ये कुछ कुर्ती हुई कुछ बिगड़ती हुई कुरोस में भरी हुई पंडित जी को दो चार गली कटी सुनाएंगी। दरवाजे पर पहुंची, दरवाजा खोला, पंडित जी आए, उन्होंने उलाहना दिया, अरे इस बच्चे के ऊपर भी इतना भार तुमने दे दिया, तुम नहीं ला सकते थे, अपने तो निखल्ले ऐसे ही हाथ घुमाते हुए चले आए और बच्चे पर सब भार दे दिया, और ऊपर से आपने इसे काट दिया। अरे कौन बच्चा, कहाँ सामान, कहाँ क्या, मुझे कुछ पता नहीं है। तो पता भी नहीं है, अरे बच्चा तो वहीं पर बैठा हुआ है, तो चलो तो जरा बच्चा देखो। गया देखा, खोजते ढूंढते 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 कहीं बच्चा नहीं। मैं कहा जरा वो लाना तो गीता, गीता लाया, उनके सामने दिया गया, देखा खोल करके जो लाल चिन्ह जो स्याही का बना हुआ था, लाल स्याही भी नहीं है। आंखों से आंसुओं की धारा गिरने लगी और अपने स्त्री के चरणों में पड़ गए, तू इतनी सौभाग्य थी जो उनको देखा, हमको संदेह हो गया था, इस संदेह को दूर करने के लिए प्रभु जो गौर से करते हैं, यदि वैसा कोई भक्त हो तो हमारे लिए करता है ने? तो ऐसा ही हो जाता है। दोनों छुट फुट करके रोने लगे। ये है मद भक्त, भक्ति का ऐसा ही अनुशीलन होना चाहिए। ये गीता का तात्पर्य है। गीता का तात्पर्य कर्म नहीं है। कर्म उस साधारण लोगों के लिए है जो कर्म किए बिना रह नहीं सकते हैं। तो उनको वैदिक कर्म जैसा कि शास्त्र में बतलाया गया है करते हुए भक्ति करें और उनसे ऊपर उठ हो जाए तत्व ज्ञान हो जाने के बाद में ऐसे अनन्य भक्ति करना चाहिए। अर्जुन ने कहा प्रभु ये हमसे इस युद्ध क्षेत्र में नहीं होगा, हमारे लिए कुछ और सरल करके कहिए। तब उन्होंने कहा मज्जाजी भव, हमारा जजन करो, पूजा अर्चन तो कर दो। प्रभु पूजा अर्चन में तो घी इत्यादि सामान चाहिए, फूल चाहिए, पुष्प चाहिए, ये सब यजन यज्ञ अथवा अर्चन इत्यादि। यहाँ पर अर्चन इत्यादि से तात्पर्य है कोई द्रव्य से लेकर के भगवान का पूजन उनको अर्पण इत्यादि करना है। इस यज्ञ स्थल में धनुष और बाण और ये सब चीजें भरी पड़ी हैं, इसमें वैसा भाव मेरे लिए कहाँ से संभव है। प्रभु कुछ और नीचे उतरिए, कुछ मेरे लिए ऐसा कहिए जो मैं कर सकूं। मांग नमस्कुरु, इसमें कोई चीज की जरूरत नहीं है। एक बार भी यदि कृष्ण को प्रणाम कर दिया फिर उसका जन्म नहीं होता।
कृष्ण प्रणाम ही न पुनर्भवाय,
कृष्ण का प्रणाम करने वाला कभी भी जगत में नहीं आ सकता। एक बार भी प्रणाम कर दे, प्रणाम माने क्या, प्रकृष्ट रूप से नमन करता है। न माने अहंकार को दूर हुक करके और भगवान के चरणों में सर्वस्व समर्पण करना, ये प्रणाम का तात्पर्य है। एक बार भी यदि ऐसा कोई कर प्रणाम कर दिया उसका जीवन सार्थक हो जाए। अथवा कहते हैं इसका अब एक अर्थ लीजिए, भगवान को प्रणाम करते हुए उनका जजन करते हुए उनमें नौधा भक्ति या चतुर्धा अथवा तीन प्रकार की भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अथवा एक नाम संकीर्तन, ऐसा करते हुए अपने चित्त को भगवान में लगाए और इन कर्मों को भी करें तो भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं। गीता का यही सर्वोत्तम सार है। यदि हम लोग इनमें से एक को भी या सबको भी सामूहिक रूप में फिर यदि ग्रहण कर सके हम लोगों का जीवन सार्थक हो जाएगा, रसमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, फिर लौट करके इस जगत में नहीं आना पड़ेगा। यही आज मैं संक्षेप में अपना वक्तव्य प्रकाश किया। हमारे पूज्य हमारे ये श्रद्धेय स्वामी जी हैं, शास्त्री जी हैं, और हमने से यदि कुछ गलती हुई हो तो आप लोग इसके लिए क्षमा करें। वंशा कल्पतु हम लोगों की सुविधा और असुविधा को भी देख रहा हूं, इसलिए आज मैं अपना कुछ विशेष वक्तव्य दूं ऐसा समय नहीं है। 8:30 बज चुके हैं, इसलिए मैं केवल अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए अति अल्प समय में मैं अपने कार्य को समापन कर गोष्ठी का समापन किया जा रहा है। इसलिए आप लोग ये न समझें कि फिर अब 8:30 से 9 या 9:30 बजेंगे, ऐसा भ्रांति निकालते मन। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुन आज सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय अपने श्रीपद आचार्य चरणों को चरणों में मैं शत शत नमन करता हुआ आज के मुख्य अतिथि वंदनीय स्वामी त्रिनंदी स्वामी श्री भक्ति वेदांत नारायण जी के चरणों में शत शत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप ने एक बार राधा तत्व के विचार के लिए मुझे याद किया था और मैं इन्हीं के गौड़िया मठ में जाकर मैंने राधा और कृष्ण तत्व की एकता पर अपने विचार प्रस्तुत किए थे और बताया श्रीमद् भागवत में राधा कहाँ है। मैंने कहा श्रीमद् भागवत में राधा कहाँ नहीं है। आप बहुत ही प्रसन्न हुए, आपकी दयालुता, आप श्री राधा तत्व के परमाराधक हैं। अभी इनके शिष्यों में से एक व्यक्ति बोल रहा था सबका तत्व श्याम है और श्याम की आराध्य श्री राधा रानी है। राधा रानी को हम आप समझ नहीं पाए हैं, राधा तत्व बहुत ऊंचा है। इसीलिए राधा तत्व को प्रकट करना नहीं। जैसे अपने मुख्य धन को लोग छिपाते हैं, गोपनीय होता है, अपने धन की चर्चा कोई करना नहीं चाहता, उस प्रकार हमारे वृज तत्व का परम गोपनीय तत्व श्री राधा रानी। विशेष में क्या कहूं, स आत्मानं द्वेधा पातयत पतिश्च पत्नी च भवताम। हमारे ब्रज की आराध्या मुख्य शक्ति श्री राधा रानी ब्रखमानु नंदिनी किशोरी जी है। यदि उन गौर तेज का की कृपा हो जाए तो श्याम तेज अपने आप हृदय रूढ़ हो जाएगा। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। महाराज इधर बरसाना है राधा रानी का, तो उधर नंदगाम श्री ठाकुर जी का है और बीच में प्रेम सरोवर है। सच्चा प्रेम तो श्री राधा ने कृष्ण के साथ किया, वह हमारे लौकिक व्यवहार में किसी को माता बना ले या किसी को पिता बना ले वो तो जगत जननी है। इसलिए चाहे मथुरा में कुब्जा को हम आराध्या बना लें और द्वारका में रुक्मिणी जी को बना लें, पर हमारे श्री राधा तत्व के कोट कोट अंश की बराबर जगत में कोई नहीं। उधर हमारी भक्त भी संत नारायण जी ले गए हमें। अब गीता में हम क्या कहें, गीता में केवल एक बात कहकर वक्तव्य समाप्त कर रहा हूं। महाराज गीता का प्रारंभ विषाद से हुआ और जो कुछ होगा तो होगा, गीता का शुभारंभ अर्जुन के विषाद से हुआ और जहां विषाद है वहां गीता क्या देती है,